I shall speak to you in a few words what I am thinking in my mind just now, or what I have been thinking for the last few minutes. The main principles of life may be summed up in two words, being and doing. The world is mostly engaged in doing, and the entire program of human life may be defined as one of intense engagement in doing one thing or the other. Whatever be the walk of life of a person or the profession which a person may be following, it is immaterial where you are placed in society, and what are your circumstances and so on. It follows as a general principle that everyone is compelled to do something, and life is mostly identified with doing. Life is action, as you must have heard it said many times, even through scriptural quotations. But what many people would not have the time to understand or ponder over is that action is a process that proceeds from a being, which you are. It is not a movement in the air. It is not merely flying without anything that flies. There is something that flies when you say something is flying. There is flying or movement. There cannot be movement unless there is something that moves. So likewise, there cannot be doing or action unless there is someone that acts or that does. Now, we are generally overwhelmed with an idea of doing the maximum that is possible, and to the greatest extent conceivable, in the most intense manner, for the largest profit, as we can think of in our mind. We are aspiring for a sort of an infinite result to follow from our actions. Whatever I do must produce a large result. There must be the greatest to produce which will make one happy, myself and others. But this is very pious enthusiasm, no doubt. But enthusiasm alone does not count in this world. I am reminded of a line perhaps from Milton, where it is said, "The road to hell is paved with good intentions." Good intentions alone do not count, because many a time, what you regard as a good intention may not be good when all the factors, the pros and cons of the issue are considered dispassionately. Otherwise, there would be no defeat or failure in life. If everything is clear to your mind, why are you defeated in life? That means certain conditions of life are not clear to the mind. Certain aspects are out of the ken of human perception. That is why what we regard as right sometimes produces a result which is most unexpected. all this difficulty arises because of our over enthusiasm to do things rather than find time to consider the background of our actions or doings, that we have to be something before we do something. An empty cause cannot produce a rich result or an effect. Or rather, to put it very humorously, holiness cannot proceed from hollowness. You must be holy within in order that you may spread a holy atmosphere around you. Now, to put it precisely, the whole point before you, you cannot do something more than what you are. This is a very important scientific fact that you ought to remember. The cause cannot produce an effect wider than itself, or qualitatively more valuable than itself. It is stupid on the part of any person to think that infinite results can be produced or unlimited effects can follow from limited causes. And in order that you may be in a position to assess the character of the result that has to follow from your actions or doings, you must know what is the extent of your own being in quantity as well as quality. Whatever you are in quantity and quality, that alone can come out as a result of your action. Nothing else can come out of it, not even a jot more than what you are. Now, people are, I should say, not sufficiently educated in the line of correct thinking, on account of which they go the wrong way. The mistake which they commit in thinking that they are not at all to be counted in the actions that they have to perform. You are not a factor involved in the activities that you perform. The factors involved in your actions are outside in the world, other persons, other things, and you are outside it. You have nothing to do, rather, you are a witness of your actions, and the success or the failure of your actions depend entirely on factors external to you, on the people around you, the world external to you, the things in front of you, and so on and so forth, and you forget, unfortunately for you, that you are a very essential factor. And perhaps that you are the most important factor. So, I began by saying that doing and being are correlated factors of the principle of existence. In fact, you should not use the word and when you refer to being in its relation to doing. This is only an exigency of English grammar. There is no and between being in its relation to doing. The relation between doing and being is something like the relation between the rays of the sun and the sun himself. You cannot say the sun and his rays. They are inseparable from the being of the sun. So, if success is to be the outcome of your existence or life in this world, there must be a tolerably successful conception of your own self, not merely from the point of view of your own finitude, but from the point of view of the various factors which are concerned in the development of your personality as well as the processes of your action. One of the things that mankind cannot understand is that we all live in a world of interconnected causes. No event takes place due to an isolated cause. Just as one brother suddenly falls sick due to a single event of a blow of the wind over the head, etc. A cold wind blowing over your head is not the only cause of your falling sick, catching a cold. That may be an immediately visible cause, but there were other contributory factors which led to your catching cold. Though the wind was perhaps the last straw on the camel's back, you are susceptible to the illness due to a peculiar condition of the various constituents of your physiological being. Likewise, our successes and failures in life are not brought about by individual causes. Here is a great case for cooperative action. Here is perhaps the basis of the philosophy of universal brotherhood and universal affection, universal work with the united spirit. That events do not occur in this world by single causes is not merely a psychological observation, but a philosophical truth. I shall try to take your mind back to the great hymn of the Rig Veda, the Purusha Sukta, where the great sage, the seer of the hymn, tells us that the world is an interconnected system in the sense of a vital living being, to bring which truth out clearly, the world has been conceived, the universe has been regarded as the Purusha. The universe has not been created by the Purusha. This is not what the hymn tells us. The universe is the Purusha, says the Veda. Purusha evedam sarvam yad bhutam yachya bhavyam. Purusha evedam, he says. He does not say that Purusha created the world or the universe. The creation is the Purusha himself. Why has this analogy been brought out? Merely to tell us the relationship that exists among ourselves, among things in this world, among souls, and perhaps between the souls and God Himself. The Purusha, as the Veda puts it, is a living being, not a dead mechanistic structure. And you know how a living being works. A living system is an organically connected body, as our own body is, where every event taking place in any part of the body is reflected in every other part of the body, and you cannot say which is the cause and which is the effect there. Inasmuch as there is a mutual action and reaction among the parts of this vital organism, the cause and effect relationship in a scientific fashion does not apply here. There is no linear movement of the effect from the cause, as in a straight line. It is not that people are arrayed in one straight line and one pushes the other and the second pushes the third, third pushes the fourth and so on and so forth. It is like a circular push, you may say, as in the game pinch hole. You must have known what this game is. Each one pinches the other and there is a circular pinching. Likewise, there is a mutual action and interaction of the parts of this system, so that you cannot say which is the determining factor of what. Here is a great spiritual truth also coming out, in addition to a philosophical asseveration and a psychological fact. Activities do not proceed from an isolated being, but they seem to be inseparable from the being. You may call that being himself or herself or itself, as you like. The activities that are taking place within our physiological system are almost identical with the system itself. They do not come out from the body. It is an adjustment of forces, factors, conditions, etc., within the gamut of the organism. And even a condition of a single physical cell in our body is determined by the total healthy condition of the entire system. They say biologically that your whole personality can be seen through a single drop of blood taken from your body. One drop of blood of your body will tell what you are, if it is properly observed. Everything is there. Even a cell from the body is sufficient, one cell. That will tell what you are whole, because each cell is a whole by itself. It is not a part. The whole that you call your body is made up of smaller holes, W-H-O-L-E. And there are no parts in this world, as there are no parts in our body. Each part, the so-called aspect or part, works as a whole by itself. And so, taking this analogy to the point raised by the hymn of the Rig Veda, Purusha Sukta, we may safely conclude that we are living in a world which is characterized by conditions which are different from what we see with our eyes. We are living in a different world altogether. The world that we see with our eyes is not what it appears to be. Things are not what they seem. And this fact is not clear to our mind, we do not understand it, and therefore we come across. We move blindfoldedly with our own logical systems created by our own intellects. And we have with our own so-called scientific observations, which are far, far removed from the truth of things. And therefore, there should be no wonder if we fail in our endeavors in life. By endeavor, I mean any kind of endeavor, even your spiritual sadhana. Even that can be a failure, as it really has been in most cases. Because your very concept, basic, is erroneous. The basic concept of a person is that I am a human being, a body rather, absolutely unconnected from other persons, other bodies, with whom I have to deal in some particular way. You have to deal with people. Oh, it is a very pitiable state to regard other people as something to be dealt with. Would you like to be dealt with by someone? You don't like this world. Even this idea is repellent. That person wants to deal with me, to confront me, to face me, to utilize me, or put me into use, and so on and so forth. No part of the body would tolerate this attitude by another part of the body. Again, to take your mind back to the Purusha Sutta. I don't think even our brain will use the leg as a tool. If you can understand how the brain would express its attitude towards its leg. The brain would never treat the leg as a servant. The brain is not a boss. And the other parts of the body cannot be regarded as their subordinates. I used to sometimes jokingly give the example of spectacles worn by people. The spectacles are for the use of the eyes, but the load is borne by the nose. What a pity. Why should I do anything for you, sir? What have you done for me? Why should the nose bear the burden of the spectacle? For unnecessarily, for the sake of the eyes, all the benefit goes to the eyes and you bear the load. Suppose you put your load on my head, I will resent. What is this? But the nose does not say that, because there is a vital, organic relationship between the nose and the eyes. The Veda very pertinently gives this analogy of the Purusha, because we cannot think of anything superior to a human being. The highest concept in our mind is of a human being. Even our idea of God is anthropomorphic. A huge person, he may be as vast as space, it does not matter, but he is like a human being only. So the Vedic seer perhaps was aware of this. So he told us, okay, all right, the whole universe is the Purusha, a person. Well, you may see, call him the Supreme Person. Now, why I am telling you all this is in the form of a story, as it were, because we should not joke with life. Many of us are elderly persons, not small babies. It is said that there is no fooling with life after 40. You cannot simply take life as a diversion. It is a very serious matter. And we cannot simply eat and drink and imagine that we are merry. Because a day will come when we will be suddenly taken by surprise by truth of things. The truth of things will begin to stare at us. You have ignored me for so many years, now I am here. It will come before you like a large creditor. You cannot stand before the creditor afterwards. And he will tell you, now I am here. What are you going to do with me? The truth of life is quite different from what you imagine in your mind. Your relationship with me and my relationship with you, it is quite different from what I think in my mind or what you think in your mind. Your ideas are not going to be taken into consideration by the nature of things. The nature will simply care a hoot for what you think in your brain. You say you go to hell, I don't care. You say it is a logical thought, a scientific observation. Go to hell, nature will tell you. Nature does not care for your logic or your scientific observations. They are only for your study or your laboratory, and I am a different thing altogether. This will come before you like a terror, one day or the other. And it is better to be little cautious now itself before we are driven to this predicament by the powers of nature, which are the powers of God Himself. God is not so compassionate as we imagine Him to be, because we have got a sentimental idea about compassion. God is not a sentimental being. He is a terrible judge. He can even pass death sentence. But you cannot say that the judge is not a compassionate being. Can you call a judge as a cruel man? Nobody says that. The Supreme Court judge is not a cruel person. He is not a hard-hearted villain. He is called justice. He does justice. The name itself is justice. But justice can even finish you off. What a pity. Is this love? And you know, law and love are not contradictory in the case of a judgment of a court, for example. The judge may have great love for you, but he may send you to Andamans. Nowadays, they will send you to some other place. So, my dear friends, I am only thinking loudly before you. I was told you what I have been thinking for a few minutes before I came to this place. Life is doing, but it is not simply doing as you think. It is not an empty action, unproductive of consequences, but it is a terrible thing that you are engaging yourself in. And when it becomes a terrific thing, it becomes a law of karma, binding you, rebirth and so on and so forth. Karma will not bind you if you are able to connect harmoniously the being that is its background. But if you ignore the aspect of being and lay stress only on being, then it will retaliate. Like a boomerang, the result of action will come upon you. When the teeth bite the tongue does not get angry with the teeth. Sometimes you bite your own tongue, you see, so they will be bleeding also. Oh, awful thing. But you are not going to break the teeth. But suppose somebody else bites you. Oh, you will create a hullabaloo and go to the thana and you will file a suit in the court and what not. But the tongue never files a suit, even if it is bitten, a portion of it is bitten off. This is the truth of things. They are all analogies which have pregnant within them the great forces that are prevailing in this world. Our relationship among ourselves, our relationship with God, our relationship with the nature outside, all this can be summed up in a single principle, the relationship of being and being. And you cannot understand what being is. Therefore, you cannot understand what doing is. So, how can you do anything when you cannot understand what it is? So, Bhagavan Shri Krishna has been indefatigably emphasizing the necessity to understand things before you act. He always says karma should be based on buddhi yoga. He does not advocate foolish actions. He does not ask you to go headlong into the pit of doom. Every action is to be based on understanding of the pros and cons of the action, the various factors involved in the action, beautifully put in the Bhagavad Gita, Adhishtanam, Gadhakarta, Karanam, Chapradagvidam, Vibhidhashti, Pratakyeshta, Daivam, Chayavatra, Panchamam. You think that you are the only factor involved in your action, but he says there are five factors, of which most people are not conscious. And finally, he puts the cap on your head by saying, Daivam Jaivatra Panchamam. There is an eternal, universal law that finally determines the result of your action. If you ignore its presence, you will pay the price. So, life in this world, whether it is a life that one lives in an office or a factory or a field or in the streets or in a cloister or in a temple, whatever be that type of life that you are living or leading, a single law will operate upon it. The central constitution of God will be the determining factor behind every action of yours, even if it be the littlest of actions. There is only one law operating, that is what is called Rita in the Rig Veda, based on Satya. Ritam cha satyam cha abhidhatta prasodhya jayata, says the Rig Veda. Rita and Satya operate in this world. The Rita is the face of Satya. Or you may say, the righteousness of the kingdom of God. As Christ put it, he seek ye first the kingdom of God and his righteousness. His righteousness is the face of the kingdom that is in heaven. And they are inseparable. Like the government and its laws, you cannot isolate one from the other. The government is the law and law is the government. Likewise, God is his principle and the principle is God. Rita is Satya and Satya is Rita. Being is doing, doing is being. How can you live in this world? Life itself is horrible. If you go on analyzing threadbare, the very fibers which constitute life, but we take it very lightly. Chai piyo, maja karo. It is not so simple. And if you take it as a meaningless joy, then you have to pay the price. Yatta dagre vishamiva parinami amrutopama. In the beginning, it is like terrible poison. When amrita was churned out from the ocean, you see, in amrita manthana, first nectar didn't come out, only poison came. And Lord Shiva has to drink it, poor man. But anyhow, poison comes first. Even when you are engaged in an honestly right action, a very pleasant result will not follow immediately. That is not how things are made. There is a reaction set up by the dust that will first blind your eyes. You will be taken aback by surprise, by factors which you did not expect. So life is a mystery, it is not an equation of mathematics. You cannot simply calculate the consequences that follow from your actions. If that has been the case, everybody would know what will follow as the result of an action. You will all be successful. You cannot mathematically calculate the nature of the result that follow from your deeds because you do not know the causative factors of the deeds. And to clinch the matter, I can tell you that the main causative factor of all your actions is being itself. and I have no time to explain the various aspects of what actually is meant by the word being. Being does not mean your bodily being merely, though that is one of the things, of course, to be considered. Actions do not proceed merely from your bodily being, the Mr. being or Mrs. being and all that. The actions do not proceed from that being merely. That so-called bodily being of yours, which you wrongly imagine as the cause of your actions, is one of the factors, among many others, of which you are completely oblivious. So, I am not going to expatiate on this theme. It is a very complicated subject. But once you understand it, you would not like even to take your meal outdoors. You will say goodbye to lunch, I am satisfied, this is a terrible thing I have heard. You will close your eyes and start crying that very moment if you know what life is made of. You will neither have hunger or thirst outdoors. This hunger and thirst and all that arise because of our taking life as a joke. It is not a joke, it is a very serious thing. And if you know the seriousness of it, you will be simply dumbfounded. Oh, this is what it is. Nobody told me this. And who will tell you this? Because everybody is like you. Blind leads the blind. विचित्र रूपी जगत जिसमें हम सब रहते हैं एक मामूली चीज नहीं है। पहले पुराने जमाने में कहते हैं कई सैकड़ों हजारों सालों को पहले लोग समझते थे कि ये दुनिया एक चपटा चीज है जैसे एक चपाती है जैसे रोटी है कहते हैं ऐसे और गोल जैसे दोशा है या रोटी है
हैं ये चक्राकार
और सूरज एक दिशा से निकलते थे और फिर पश्चिम में अस्त होते थे फिर ये समझ में नहीं आता था कि सुबह फिर यहां से कहां से आता होगा ये क्या बात है
एकदम चल के बहुत दूर जाने में किनारे में गिर जाएंगे
मैंने एक दफा एक बच्चे से पूछा अरे भाई एक अजीब बात सुनाऊं ये सूरज यहां से निकलते हैं और वहां जाते हैं और सुबह फिर यहां से कहां से आते हैं ये क्या भाई ये तो जब वो सोचा हम लोग सोते वक्त फट आ जाते
रात में कूद के आ जाता है
रात के टाइम हम जो सोते रहते हैं उस वक्त कूद के आ जाता होगा मैंने कहा एक रात में जाओ सो जाओ मत देखते रहना ये बड़ा अजीब बात है यहां से निकल के वहां जाता है और सुबह फिर यहां से कहां जाता है ये बड़ी अजीब बात है नहीं है वेल ये कहानी है बड़ी सुंदर चीज है हंसने के वास्ते लेकिन बात यह है दुनिया ऐसा नहीं है जैसे लोग बच्चे समझते हैं एक दोशा या चपाती का माफी नहीं है कहते हैं ये एक गोलाकार है जैसे एक गेंद है या एक नारंगी है इत्यादि वो सूरज घूमते भी नहीं है आजकल कहते हैं वो पृथ्वी घूमती है देखिए कहने का मतलब यह है जैसा हम देखते हैं वैसे चीज नहीं है हम समझते हैं सूरज घूम रहे हैं सूरज की उदय हो गया सूरज ऊपर आ गए हैं अभी नीचे उतरते हैं वो ना उतरते हैं ना ऊपर आते हैं ना
दक्षिण को जाते हैं
कुछ नहीं है ये जाता है ये पृथ्वी की एक चाल है और इसको हम नहीं समझते हैं क्योंकि हम ही बैठे हैं उसमें हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये पृथ्वी घूमते वक्त हम भी उसके साथ घूमते हैं जी उल्टा जाता है और देखो फिर ये भी अजीब बात है महात्मा सिंह कहने का मतलब ये है जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनके पैर ऊपर है सिर नीचे ये बड़ी अजीब
और अमेरिका वाले हमारे बारे में
वो अमेरिका वाले ऐसे बोलेंगे हम लोग ऐसी टांगे हुए हैं सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ये गोंदे चिपका है। ये अजीब बात है, ये विचित्र रूपी जगत है जिसमें हम रहते हैं और जिससे हम कुछ संबंध रखते हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक संबंध है। हमारे संबंध आपसे क्या है, आपका संबंध हमसे क्या है, इसको जानना जो है यही जीवन के विज्ञान है। जीवन के विज्ञान का अर्थ यही है कि आपस में हमारे संबंध क्या है, इसको ठीक से समझ करके काम करना। अगर मुझे मालूम नहीं है कि हमारे संबंध आपसे क्या है, मेरे बर्ताव खराब हो सकता है आपकी तरफ। आप हमारा भाई है या पिता है या दोस्त है या दुश्मन है, ये क्या चीज है, ये हमारा नौकर है, ठीक समझना चाहिए पहले। बिना समझ करके हमारे बर्ताव आपकी तरफ कैसे हो सकता है। इसी प्रकार हमारे संबंध हरेक चीज का इस तरफ जैसा है, इसको पहला समझना चाहिए और समझ के काम करना चाहिए। समझ के करो, संभाल के करो हम कहते हैं। समझ के करना जो है ये एक बड़ी बुद्धिमत्ता है। और इंग्लिश में कहावत है, फूल्स रशियन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, एंजल्स फियर टू ट्रेड एंड फूल्स रशियन टू दैट प्लेस। हम सब कुछ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे समझ के करो भाई, उधर क्या गड्ढा है या आग है या सांप है बिच्छू है, जान करके काम करना चाहिए। और सुबह से शाम तक हम काम करते रहते, और बहुत लोगों को यह भी पता नहीं कि हम क्यों काम करते। मैं कई लोगों से मिलते समय पूछता था, अरे भाई आप लोग इतना काम करते हैं सुबह शाम तक क्यों करते हैं, आपको क्या चाहिए, क्यों काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाता है, हमारे परिवार है, बाल बच्चे हैं, इनको संभालना है, क्यों संभालना है उनको, कौन बोला आपको संभालने के लिए, ये प्रश्न का जवाब नहीं। अरे भाई क्या बोला, करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। देखो ये किस्म की अज्ञान है, हम बिल्कुल वहां फंस गए हैं। अधिक प्रश्न पूछने से जवाब नहीं आने का है। बाद में बोलेंगे क्या करना, रोटी दाल खाना है, क्यों खाना है रोटी दाल खाना है, ये भी पूछेंगे, कौन बोला आपको रोटी दाल खाना चाहिए, मर जाएंगे, अरे मरो भाई क्या हो गया, क्यों जिंदा होना चाहिए, अगर आप मर गए तो क्या हो गया अभी नुकसान, अरे सारी मर गया समझो, सारी दुनिया खत्म हो गया, ठीक है जान हो, फिर भी क्या नुकसान है, आप संभालने वाले कि आप सृष्टि करता है दुनिया की, आपको क्या फिक्र है दुनिया की, वो दुनिया कैसे चलेगा, नहीं चले। ये सब ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो देखो आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, आप बात ही नहीं करेंगे, ये भैया जाओ जाओ चलो हम खाना खाएंगे, बोले है खाने का टाइम हो गया, ज्यादा बात नहीं करना है। इसका मतलब यही है, हमारे सामने एक बड़ा आश्चर्य, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य श्रोता श्रुत्वा पीयनम वेद न जीव कश्चित इत्यादि हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। श्रुत्वा पीयनम वेद न जीव कश्चित, इतना सुनकर के भी समझता नहीं, देखने से भी जानता नहीं, ऐसी चीजें हमारे सामने। और हम अंधों की जैसे चलते हैं, एक किस्म की एक रूटीन हो रखा है हमारा जीवन की, सुबह उठना है, बाथरूम में जाना है, स्नान करना है, चाय पीना है, दफ्तर जाना है, लिखना है, बात करना है, फिर आना है, खाना है, सोना है, ये क्यों, ये किस्म की एक चक्कर है, रोज इसको करते रहते। और इसका नतीजा क्या है, इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए, पूछने से इसका जवाब नहीं आता। मैं इंग्लिश में ये अब तक जो बात करते रहा, इसका सारांश यही है कि जगत, ईश्वर और जीव ये अलग अलग चीज नहीं है। ईश्वर ये जगह बैठे हैं, जगत उधर है, हम इधर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों संबंधित चीज है, एक से संबंध दूसरे का है। और ये संबंध भी किस प्रकार का है, संबंध का अर्थ क्या होता है? अभी देखिए, आप मास्टर जी उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, मेरा कुछ संबंध इनसे है और इनका संबंध मुझसे है। और संबंध का अर्थ है जो बीच में कुछ है, कनेक्शन, इसका मतलब संबंध होता है। और बीच में कुछ दिखाई नहीं देता, ये उधर बैठे हुए हैं दूर में और मैं इधर बैठा हूं, और बीच में तो कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय आकाश, कुछ है ही नहीं। और जब है ही नहीं है तो फिर संबंध कैसे हो सकता? संबंध का अर्थ है कुछ वास्तविक तथ्यता, कुछ है, इसी के लिए हम संबंध कहते हैं। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या चीज है बीच में बताइए, कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है नहीं तो संबंध ही है नहीं, ये कैसे कहते हैं? ये संबंध है ही नहीं बोल नहीं सकते हम लोग, संबंध है। इस संबंध को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम गलत काम करते हैं। और संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो अगर हिंदी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो जैविक, इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं, हिंदी में जैविक बोलते हैं, मुझे पता नहीं ठीक शब्द है या नहीं, निर्जीव संबंध। और हाँ, जैसे देखिए
सजीव संबंध,
सजीव और निर्जीव दो किस्म के संबंध होते हैं। ये देखो, ये ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, इसमें कई पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट का संबंध दूसरे से है, लेकिन कोई जीवित संबंध नहीं हो, निर्जीव संबंध है। अगर एक भाग को उसके निकाल दिया तो दूसरे भाग को दर्द नहीं होती, उसको पता ही नहीं लगता आप निकाल दिया। एक दीवार से एक ईंट निकाल दिया तो दीवार को दर्द नहीं होती, अगर एक अंगुली काट दिया तो आपको दर्द होता,
बाल निकाल,
एक बाल खींच लिया तो किस दर्द होती। अभी गलत से हम समझते हैं कि हमारे संबंध निर्जीव पदार्थ है, इसलिए हम कभी कभी ध्वंस दिखाते हैं और गाली देते हैं और किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जैसा कि मुझे कोई संबंध नहीं से, ऐसे हमारा ख्याल है। नहीं तो हम कैसे इतना बुरी वर्ताव से देखेंगे दूसरों को, अब कैसी बुरी बात बोलेंगे और पीटने के लिए जाते हैं, पीटने कैसे जा सकते हैं कि हमको इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस दृष्टि से हम समाज को देखते हैं, इस गलत दृष्टि से सारे जगत को देखते हैं। और एक दुर्भावना हमारे मन में ऐसे भी है कि ईश्वर भी हमसे अलग है, शायद कई चीजों को ईश्वर जानते भी नहीं, इसलिए हम चुप के कभी कभी कान में कुछ बोल देते हैं जैसा कि कोई सुनने वाला नहीं, प्राइवेट बात कान में बोलेंगे, अरे भाई सुनने वाला कोई है, ये पति पता नहीं, कान में क्या बोलेगा आप, हर एक चीज हर एक पता लगेगा किसी न किसी तरह, ये जो आप बात हमको मालूम नहीं है। देखो, अगर एक हमारे पैर के अंगुली को छुआ तो दिमाग को पता लगता है, ये प्राइवेटली कैसे पति आप छुएंगे, वो दिमाग बोलेगा पता लग गया भाई, आप बोलेंगे नहीं नहीं तुमको कैसे पता लग गया, मैं तो प्राइवेटली हाथ लगाया इधर, आपको प्राइवेटली क्या ये कनेक्शन का पता ही नहीं, आप पैर से सिर तक कनेक्शन जो है ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप बोलते हैं प्राइवेटली हम छू लिया, ये प्राइवेट बात होती ही नहीं दुनिया में, दुनिया में कोई चीज प्राइवेट नहीं होती, क्योंकि हर एक का संबंध दूसरे से होता है। और कारण का तात्पर्य है, ये संबंध किस प्रकार का है, निर्जीव संबंध नहीं है, सजीव संबंध है। और सजीव संबंध का अर्थ यही है कि एक चीज दूसरे पर आधारित है, निराधार का नहीं है। हम कहते हैं हम आजाद है, इंडिपेंडेंट है, अब मतलब नहीं हमसे, हमको आपसे कोई मतलब नहीं, ये किस्म की आजादी जो है इसे वास्तविकता नहीं है, ऐसी आजादी दुनिया में नहीं चलेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं चलता है। जैसे कि हमारे अंगुली का निराधार आजादी जो है ये तो बिल्कुल भूल है, अगर इस बात को हम समझ लिया, मैं इंग्लिश में कहता था कि ये वेद में क्या कहा है, सहस्र शीर्ष पुरुष आठ सहस्र पाद वो भी विशतो वृत्वात दृष्ट दशांगुल पुरुष ए वेदम सर्वम भूतम यच्च भव्यम। ये भगवान नारायण जो है ऋषि है इसकी, ये वेद मंत्र के दृष्टा, इनका कहना है यही है कि सारे विश्व एक महापुरुष जैसे, जैसे पुरुष अपने अंगों के तरफ वर्ताव रखता है, इसी प्रकार की वर्ताव ईश्वर का संबंध सृष्टि से और आपसे, और आपके संबंध जगत से, समाज से और ईश्वर से इस प्रकार का है, जैसे हमारे शरीर के अंग का संबंध शरीर से, अंग अंगी संबंध। या रामानुजाचार्य हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे संबंध ईश्वर से अंग अंगी संबंध, या शरीर शरीरी भाव कहते हैं। शरीरी और शरीर का संबंध जो है ये निर्जीव संबंध नहीं है, जैसे हमारे आत्मा समझो या जीव समझो, इसका संबंध शरीर से कैसे है, वो निर्जीव संबंध थोड़ी है। इसी प्रकार का संबंध हमारे ईश्वर से है और जगत से है, समाज से है, हमारे आप से है। इस बात को जब तक हम याद में नहीं रखेंगे तब तक हमारे वर्ताव भूरी रहे। झगड़ा युद्ध इत्यादि चलता है दुनिया में इसी कारण से कि हम आपस में अपने संबंध को नहीं जानते। हम गलत से, भूल से समझते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, इसलिए कोई मर गया तो भी हमारा कोई फिक्र नहीं, ये गलत क्या ख्याल है। इधर एक अंगुली मर गया तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होती क्या, क्यों नहीं होता है? अगर आप समझ लिया तो काट के फेंको या सड़ जावे हमको क्या है, ऐसा शरीर थोड़ी बोलेगा। क्योंकि शरीर को ऐसी ज्ञान है कि ये हमसे संबद्ध है, असंबद्ध ज्ञान नहीं है, संबंधित ज्ञान है। और सारे विश्व को एक बड़ा समाज समझा गया है ये वेद में, और समाज में आप हमारे बर्ताव ऐसे होना चाहिए जैसे अंग को अंगी से होना चाहिए। समाज एक अंगी है, हम अंग है, ये विराट कहते हैं इसको, विश्व व्यापी समाज के लिए विराट बोलते हैं। और आपके संबंध हमसे, हमारे संबंध आपसे किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे अंग का संबंध अंगी से होना चाहिए। अंग कभी भी अंगी से झगड़ा करता है, गाली देता है, मारपीट होता है उसके आपस में, कभी नहीं होती। आप कभी देखा कि दो हाथ झगड़ा करते हैं ऐसे, तुम कौन है ऐसे, ये हाथ थोड़ी बोलता है इसे, ऐसा कभी नहीं बोलता। क्योंकि ये अंग है और इसको अंगी से संबंध है, और हर एक अंग अपने को अंगी से संबद्ध समझता है, इसलिए आपस में कभी भी मारपीट झगड़ा युद्ध इत्यादि होते ही नहीं शरीर के अंदर। इस दृष्टि से हम समाज को देखना चाहिए और हमारे वर्ताव आपस में इस दृष्टि से होना चाहिए, और आखिर में हमारे वर्ताव ईश्वर से, जगत से इसी प्रकार का होना चाहिए। एक किस्म की विराट दृष्टि समझिए, ईश्वर दृष्टि समझिए। इसी के वास्ते भगवान ने ईश्वर को दिखाया अर्जुन को, अरे भाई जब तक तुम इसको देखोगे नहीं तुम अच्छे काम नहीं कर सकते हो, नहीं तो ईश्वर दर्शन कराने का जरूर क्या थी? काम करो, युद्ध करो, ऐसे बोल देते, फिर ही करता है, करना पड़ेगा तुमको, जैसे हम लोग बात करते हैं कभी कभी, करो, ऐसे चलेगा नहीं दुनिया, करो करो कितना दिन बोलते रहेंगे, क्यों करना है सवाल, ये सारे प्रश्न उठता है कभी, नौकर को पूछ लेता क्यों करना है, नहीं करेगा हम ऐसे, नौकर बात करते हैं क्योंकि उनको संबंध, ये अंदर के संबंध जो है वो जानते नहीं है। ये अर्जुन को भी ये पता नहीं था कि क्यों करना है, वो प्रश्न पूछ रहा था मैं क्यों युद्ध करूं, किसी काम को करने की जरूरत क्या है। तब भगवान ने कहा ये आदमी समझने वाला नहीं है, देखो अभी ये संबंध को तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सारी विश्व का संबंध जो है उसको दिखा दिया, अरे भाई अभी समझ लो, अभी मैं करूंगा देखो। क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं है ये कर्म नहीं चलने का है। कर्म ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और आखिर में ईश्वरीय दृष्टि से हम हर एक कर्म को हमको करना पड़ेगा। ये ज्ञान बहुत कीमती चीज है। वो चांद के ऊपर शायद कहीं कहा गया है कि सारी दुनिया को आपको कोई दिया फिर भी इसके बराबर ये ज्ञान है, उससे भी बड़ा है। और ये मिलने वाला भी नहीं ज्ञान कौन बताएगा आपको, मार्केट में थोड़ी मिलता है, आप बाजार में जाओ पूछो, कोई नहीं बताएगा। और जाने वाले भी बहुत कम है, अगर वो ही है कोई जाने वाले वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत खास चीज है और ये ज्ञान केवल सन्यासी का एक माल नहीं है, केवल मठ मंदिरों में मिलने वाली चीज नहीं है। हमारे क्या है धर्म गिर्म इत्यादि बात और सन्यासियों की है, हमारा क्या मतलब। देखो ये तो गलत ख्याल है, फिर भी विश्व विराट जो संबंध है इसमें सन्यासी गृहस्थ बाल बच्चे इत्यादि नहीं होते, वो सब एक ही किस्म के होते हैं। और असंबद्ध चीज कोई है ही नहीं विश्व में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसका भी कुछ संबंध इससे होता है। इसलिए जो अज्ञानी है वो दुखी हमेशा रहते हैं। वो भागवत ने कहीं कहा यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः द्वावे तो सुखमेते क्लिश्यते अन्तरतो जनः। जो बिल्कुल बुद्ध है वो भी खुश रहता है दुनिया में, और बहुत समझदार है वो भी खुश आनंद है, ये बीच में जो है वो दुखी है। या पूरी चीज को समझना चाहिए, नहीं तो कुछ भी ना समझो ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं जानता फिर भी खुश है, हम खा के सो जाएंगे आनंद है, नहीं तो सारी बात जान लिया तब भी खुश है आप। ये बीच में जो है अल्पज्ञ है, अज्ञ भी नहीं है सर्वज्ञ भी नहीं है अल्पज्ञ है, ये बड़ी आपत्ति कारण होते हैं और अपने को बड़ी समझते हैं। हाँ इसलिए मेरी हार्दिक प्रार्थना आप लोगों से यही है कि जरा से अपने आंखों को खोल के हमारे जीवन के सामने क्या चीज खड़ा है इसको थोड़ा समझे, हम कहाँ रहते हैं पहले सोचे, हमारे आसपास में कौन रहते हैं, इनसे हमको क्या संबंध है और मैं किस प्रकार से वर्ताव इनसे कर रखना चाहिए और मेरे जीवन का ध्येय क्या है और इसको जीवन को हम किस प्रकार से चलाना चाहिए और ज्ञान कर्म का संबंध क्या है इत्यादि को विचार करके ज्ञान पूर्वक अपने कर्म को अपने जो ड्यूटी है इनको अच्छी तरह से संभालने के लिए प्रयत्न करे, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर कृपा से जीवन के ध्येय को आप इसी शारीरिक जीवन में पाएंगे समझेंगे और साक्षात करेंगे। हरि ओम तत्सत भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।